मुख्य समाचारों में प्रधानमंत्री ने कहा कि लेबर नेता एंथनी एल्बनीजी की वृद्ध देखभाल के लिए 2.5 बिलियन की प्रतिबद्धता क्षेत्र को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं। ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को भेजेगा बुशमास्टर बख्तरबंद वाहन और रूस के विदेश मंत्री अपने 2 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि विपक्षी नेता एंथनी एल्बनीजी वृद्ध देखभाल नीति की चुनौतीपूर्ण प्रकृति को नहीं समझते हैं। लेबर ने कल रात बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए अपना बजट प्रस्तुत किया। श्री एल्बनीजी ने 2.5 बिलियन के वृद्ध देखभाल पैकेज की घोषणा की, जिसमें ये सुनिश्चित करने का वचन शामिल था कि इस सेक्टर की हर सुविधा साइट पर हर समय एक पंजीकृत नर्स होगी, अधिक वर्कर्स को काम पर रखा है और भोजन के लिए उच्च मानक निर्धारित किए हैं। ये फेयर वर्क कमीशन से उच्च वेजेस निर्धारित करने की अपील करके इस क्षेत्र के वर्कर्स के लिए वेतन वृद्धि को पूरी तरह से फंड करेगा। श्री मॉरिसन का कहना है कि श्री एल्बनीजी वृद्ध देखभाल क्षेत्र के मुद्दों से निपटने की सही लागत को नहीं समझते हैं।
A speech doesn't solve the problem in aged care. And if he thinks what he's talking about only costs $2 billion, that only underscores that he really doesn't understand the detail and the complexity of these issues. The things we're working towards there, I believe across the parliament are shared. I think we're trying to achieve the same things. But the difference is, we've got a plan to pay for it. We've got an economic plan which he didn't deliver last night. And we've got an understanding of the complexity of these problems and a package of over $19 billion to deal with it.
और श्री एल्बनीजी ने ये कहते हुए प्रतिक्रिया दी है कि सरकार स्वयं जारी किए गए रॉयल कमीशन में निर्धारित किसी भी सिफारिश पर कार्रवाई करने में विफल रही है।
They have provided some additional funding, but absolutely no idea of any program to meet the challenge of the big essential, which is workforce.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के सामने यूक्रेन को वापस लड़ने में मदद करने के लिए वहां कई बुशमास्टर वाहन भेजेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कल गुरुवार को फेडरल संसद में एक वीडियो संबोधन के द्वारा ऑस्ट्रेलियाई निर्मित बख्तरबंद वाहनों की सैन्य सहायता के लिए कहा। श्री मॉरिसन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया श्री जेलेंस्की के अनुरोध को पूरा करेगा।
We're not just sending our prayers, we're sending our guns, we're sending our munitions, we're sending our humanitarian aid, we're sending all of this, our body armor, all of these things, and we're going to be sending our armored vehicles, our bushmasters as well, and we'll be flying them over there on our C-17s to make sure they can be there to support.
ऑस्ट्रेलियन रक्षा बल इस पर काम कर रहा है कि वो यूक्रेन को कितने बुशमास्टर और कब देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का कहना है कि रूस डॉनबास क्षेत्र पर शक्तिशाली हमलों के लिए सेना जमा कर रहा है। अपने दैनिक वीडियो संबोधन में श्री जेलेंस्की का दावा है कि रूस रूसी सेनाओं द्वारा नियंत्रित खेरसान क्षेत्र में अपने संसाधनों को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह भी नोट किया है कि यूक्रेनी सेनाएं कीव के उत्तर में रूसी सैनिकों को खदेड़ रही हैं, लेकिन चेतावनी दी है कि वे अब अपने संसाधनों के लिए अन्य प्रमुख शहरों का रुख कर रहे हैं।
Також на Донбасі, у Маріуполі, на Харківському.
In Donbass, in Mariupol and in Kharkiv's direction, Russian forces are amassing resources for powerful strikes. We will defend, we will do everything possible to stop the occupiers and clear our territory from their evil and senseless crimes.
New South Wales में गंभीर बाढ़ के पीड़ितों को क्वींसलैंड में आपातकालीन आवास प्रदान किया जाएगा। लिस्मोर से लोअर मैके तक के निवासियों को निकालने के आदेश जारी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटीज एंड जस्टिस उत्तरी नदियों की बाढ़ से प्रभावित लगभग 1500 लोगों के लिए ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट में होटल, मनोरंजन पार्क और मोटर घरों में आपातकालीन आवास उपलब्ध करा रहा है। इस बीच न्यू साउथ वेल्स स्टेट एमरजेंसी सर्विस ने चेतावनी दी है कि पहले से ही लगभग बुरी तरह से भीगे हुए क्षेत्रों में अचानक और बाढ़ आ सकती है, जिससे पेड़ों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। और राज्य पुलिस का मानना है कि उन्हें वृद्ध देखभाल नर्स अनीता ब्रेकल का शव मिला है, जो लगभग 3 दिन पहले लिस्मोर के दक्षिण में बाढ़ के पानी में लापता हो गई थी। फेडरल विपक्ष के नेता एंथनी एल्बनीज़ी प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन पर चुनाव कराने का दबाव बढ़ा रहे हैं। श्री मॉरिसन पहले कह चुके हैं कि चुनाव मई में होंगे, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से तारीख की घोषणा नहीं की गई है। श्री एल्बनीज़ी का कहना है कि श्री मॉरिसन अपनी पार्टी के लाभ के लिए चुनावी घोषणा को खींच रहे हैं।
I say to the Prime Minister, enough of the pantomime. Call the election. Call the election. Let the Australian people decide. This business of not calling the election so that he can use taxpayers' money for ads is just yet the latest example of a Prime Minister who thinks that taxpayers' money is the same as Liberal Party money.
18 अप्रैल वो आखिरी तारीख हो सकती है जब श्री मॉरिसन गवर्नर जनरल को चुनाव बुलाने के लिए कह सकते हैं। मेलबर्न के उत्तर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए 5 लोगों में से एक की पहचान विक्टोरियन बुचरखाने के अध्यक्ष के रूप में की गई है। पॉल ट्रोजा उस विमान में सवार एक यात्री थे जो कल गुरुवार सुबह माउंट डिसअपॉइंटमेंट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। रेडफोर्ड मीट के बोर्ड का नेतृत्व करने वाले 73 वर्षीय एल्बर्ट पार्क के व्यक्ति को एक भावुक और कुशल नेता के रूप में याद किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर पर सवार 4 अन्य लोगों में एक 32 वर्षीय चेल्टम पुरुष पायलट, एक 50 वर्षीय इनवरलॉक महिला और 59 और 70 वर्ष की आयु के 2 न्यू साउथ वेल्स के पुरुष शामिल हैं। विमानन सुरक्षा विशेषज्ञ हेलीकॉप्टर के मलबे की जांच कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि विक्टोरिया में 30 वर्षों में सबसे खराब नागरिक उड्डयन दुर्घटना किस कारण से हुई। ऑस्ट्रेलियाई परिवहन सुरक्षा ब्यूरो के मुख्य आयुक्त एंगल मिशेल का कहना है कि भारी जंगली क्षेत्र दुर्घटना स्थल तक पहुँचना मुश्किल बना रहा है। उनका कहना है कि परिवारों को अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश हो रही है, लेकिन जांच महीनों तक चल सकती है।
But we'll also look at not only what's on the ground there, we'll try and put up drones etc. to get a picture of what was the flight path of the helicopter in its final moments, and particularly where it may have impacted any of the trees and what story that can tell us. So it is a complex site to get into, and they're still undergoing that operation at the moment.
रक्षा मंत्री पीटर डाटन का कहना है कि सोलोमन द्वीप के साथ चीन का सौदा चीनी नौसेना को प्रशांत क्षेत्र में टो होल्ड देता है, एक ऐसा कदम जो पड़ोसी देशों में चिंता का विषय है। चीनी सरकार ने नए सुरक्षा समझौते का बचाव किया है और जोर देकर कहा है कि इससे सोलोमन में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी और इसे कमजोर करने का कोई भी प्रयास विफल हो जाएगा। बीजिंग ने पुष्टि की है कि इस सप्ताह के शुरू में मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। श्री डाटन ने ABC को बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कदमों से पता चलता है कि चीन इंडो पैसिफिक में बहुत आक्रामक कार्यवाही कर रहा है।
We should be realistic about the greater presence of military vessels because I don't think their interest in the Solomon Islands is in providing, you know, basic training to the police. I think people can see straight through that.
और भारत में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। बताया गया है कि वो इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। श्री लावरोव से पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी पिछले सप्ताह भारत आए थे। लावरोव की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब 11 अप्रैल से भारत और अमरीका के बीच वार्ता होनी है। और बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 74 सेंट और भारत के लगभग 57 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर और न्यू साउथ वेल्स के कप्तान पीटर नेविन ने तुरंत प्रभाव से पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आज सुबह सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पत्रकारों से बात करते हुए 36 वर्षीय पीटर ने पुष्टि की कि 2021-22 शेफील्ड शील्ड सीजन उनका आखिरी होगा, जो 13 साल के उनके प्रथम श्रेणी करियर का अंत होगा। नेवल ऑस्ट्रेलिया के 443वें पुरुष टेस्ट क्रिकेटर थे, जिन्होंने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण करने के बाद 17 टेस्ट और 9 T20I में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। मेलबर्न में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। होबार्ट में हल्की फुल्की बौछारें, 17 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम 13 डिग्री। कैनबरा में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। सिडनी में बौछारें, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।